Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050 or 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद नमस्कार घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज शनिवार है आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत।
वार्म वेलकम शिशिर।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख।
रजिस्ट्रेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम 2024 बिगिंस टुडे बाय ऑफरिंग 1 lakh इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इन द इंटरनेशनल न्यूज अनाउंसिंग अनदर स्टिमुलस पैकेज, China pledges to significantly increase debt by helping local governments offering subsidies to people and to support property market. And on Wall Street, the Dow climbs nearly 1% to a record closing high.
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण आज से शुरू। लगभग 1 lakh युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे। एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए चीन ने स्थानीय सरकारों की मदद करने, लोगों को सब्सिडी देने और संपत्ति बाजार को समर्थन देने के लिए ऋण में वृद्धि करने का संकल्प लिया। और अमरीकी बाजार में डाउ जोन्स लगभग 1% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड स्तर पर बंद।
The registration has begun for the Prime Minister internship scheme this evening at the online portal pminternship.mca.gov.in and will remain open till the 25th of this month. 1 lakh internship opportunities have been offered by 193 companies so far on the portal for the scheme. The government aims to provide 1.25 lakh internship opportunities during the financial year 2024-25. The total cost of the pilot project will be 800 crore rupees. The government aims to provide 12-month internships for 1 crore candidates in the age group of 21 to 24 years for 5 years. An intern will receive monthly financial assistance of 5,000 rupees for 12 months and a one-time grant of 6,000 rupees. As per the sources, the opportunities are available across 737 districts spread over 36 states and union territories. The opportunities are spread across 24 sectors including oil, gas and energy, travel and hospitality, automotive and banking and financial services. The total companies for this pilot project have been identified based on the average corporate social responsibility expenditure of the last 3 years. Participation of the companies in the scheme is voluntary. Apart from this, any other company, bank or financial institution desirous of participating in the scheme may do so with the approval of the Ministry of Corporate Affairs. Now, this Shishir is required because India needs to be the hub for the skill, the young skill opportunities, skill development. In the region, and we want to be the capital.
Yeah, and one more thing we need to understand, that when we talk about demographic dividend, when we say that 65% population is less than the age of 35 years, and we need to provide some kind of a skilling, upskilling and reskilling. So this kind of internship after formal education, say post graduation or graduation, certainly helps a youth to get a proper job, because most of the time we get a complaint that you have completed your course but you are not competent enough to get a job in any particular company. So this kind of on-site training will certainly help and enhance the value of a youth. So employment and employability, these two things combined is the aim of this government, and I think this particular program is going to help in that.
Shishir, noteworthy is the fact that the significant progress has been made, with the employable percentage of final year and pre-final year student increased from 33.9% in 2014 to 51.3% in 2024.
Yes, certainly, and if you can remember that government is running a program for skilling. And not just skilling, but also upskilling and reskilling. So even after getting, a job immediately after completing your education, whether your employability and whether your worth in the in a company is going to increase, that depends upon the upskilling and reskilling. And this particular program is going to help, overall skilling program is going to help the youth to enhance their employability.
We have a first caller online with us from Jaipur. Navneet, a warm welcome to Market Mantra. Please go ahead.
Yeah, thank you, sir. First of all, I would like to wish Happy Dishara to all the Market Mantra team members. So my question is regarding the RBI bank rate. As we have been seeing for last 2.5 years, RBI has maintained a bank rate of 6.5%, whereas the other central banks, leading central banks, have already started.
We need to understand that the condition in various economies are different. If Federal Reserve has done something, don't expect that RBI should mimic it, because the condition in India is entirely different from United States. We all know that United States and many of the European countries are moving towards what we call as a slowdown economy, and some of the economies are also facing a situation where we can see some kind of recession there. So there a need is there to go for an interest rate cut. But in India, when you have very high inflationary expectation, any kind of rate cut will further fuel the inflationary expectation. And we have so many, unexpected events are happening all over the world. And even in India, we are seeing the monsoon is not on a normal path. I mean, we have seen over excessive rain during the month of September. That is certainly going to impact the food inflation. Mm-hmm. So considering the overall inflationary expectation, RBI has taken a right decision to maintain the status quo. And this is the 10th time when the policy interest rate has been kept at 6.5%. So there is nothing wrong in that. And please remember that, as I said in the beginning, that we should not mimic what others have done.
Bilkul. और कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतानु साहा. अतानु जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछिए अपना.
गुड इवनिंग कोलकाता. सर, माय क्वेश्चंस आर, नंबर वन, व्हाट कॉर्पोरेट आवर कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस इन इंडिया. Social responsibilities of business in India, and my second one, the heavy industries, the role of heavy industries inside state, the role of heavy industries inside state. Sir, the Bengali communities never say Tata, Tata, always says that our Ajben, phir milenge, let's come again, love kar aiye, dhanyawad.
Thank you, Mr. Saha. First of all, greetings on Vijayadashmi. And when you talked about the CSR, if you can remember, the Companies Act 2013 has provided that all profit-making companies are going to spend a part of their profit on the corporate social responsibility. It is the 2% of last 3 year profitability, and it's not something that if you are not going to do that, there will be penalty. It has been a provision under the law, but it is not something that when the company is not spending 2%, it is going to face the penalty. However, the company will have to report that how much money they have spent and where they are spending. So this is the corporate social responsibility. Coming to your second question, heavy industry ministry or heavy industry department, particularly if we talk about the central government, now taking care of mostly the capital sector, capital goods sectors. And earlier they were taking care of the automobile sector, but now they are also more focusing on the capital goods sector and some of the other industries also. In a state, I don't think there is a very big role for the heavy industry ministry, the central heavy industry ministry, except that promoting the capital goods sector in that particular state.
जी, और दिल्ली से हमारे साथ आलोक जुड़ चुके हैं. आलोक जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछे अपना.
हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल आईटी सेक्टर को लेके है. आप अभी आईटी सेक्टर में मतलब किस तरह का मूव्स देखते हैं, स्पेसिफिकली शेयर मार्केट से रिलेटेड आगे आने वाले 3 से 6 महीने के बीच में, और जो यूएस में इलेक्शंस हैं इसकी वजह से मतलब आप एक इन्वेस्टर जो कि मतलब मार्केट मनाया है उसको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए क्या प्रिकॉशन सजेस्ट करेंगे सर?
जी आलोक जी, देखिए सबसे पहली चीज कि आईटी सेक्टर में अभी संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं, और जैसा कि हमने पहले महसूस किया था कि दुनिया भर में जहां कहीं भी अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी आई है, आईटी सेक्टर पर जो खर्च है उनका कमी हुआ है. लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसमें रफ्तार बढ़ रही है और एलोकेशन भी बढ़ रहा है. तो अगले 3 से 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आईटी सेक्टर में किया जा सकता है. इसकी संभावनाएं अच्छी है, और जैसे जैसे खर्च पड़ेगा ओवरसीज, वैसे वैसे आपके जो भी हमारी भारतीय आईटी कंपनियां, खासतौर पर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनमें संभावनाएं काफी अच्छी बनेंगी. तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा माहौल है जहां पर थोड़ी खरीदारी की जा सकती है.
जॉइनिंग अस फ्रॉम जयपुर इज जितेंद्र. वार्म वेलकम जितेंद्र.
हाँ हेलो. हाँ सर, मेरा छोटा तीन प्रश्न है. छोटा छोटा, आज जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया इंटर्नशिप वाला, तो उसमें क्या ह्यूमैनिटी और आर्ट्स जो पढ़ाई किए बच्चे उनके लिए कोई जगह है उसमें, पहला प्रश्न. दूसरा कि भारत के वाले स्टॉक मार्केट में कौन सा सेक्टर अंडर वैल्यूड है, और तीसरा विदेश में कौन सा मार्केट जैसे नैसडेक या कौन सा अंडर वैल्यूड है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के द्वारा हम परचेज कर सके.
पहले वाले प्रश्न जो है आपका इंटर्नशिप में, इसमें विषय को लेकर के कोई परेशानी नहीं है. कोई भी विषय या किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपने कहा कि ह्यूमैनिटीज यानी कि सामाजिक विज्ञान की हम लोग अगर बात करें, वहां पर क्या स्थिति है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई परेशानी है. कला संकाय से हो, सामाजिक विज्ञान से हो, या विज्ञान से हो, प्रौद्योगिकी से हो, कहीं से कोई परेशानी नहीं है. आप उसमें इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं. दूसरा जो आपका प्रश्न है कि भारतीय शेयर बाजार में कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है, मुझे लगता है कि थोड़े समय पहले जो अभी मैंने पहले प्रश्न के जवाब में कहा था कि आईटी सेक्टर में शुरू में इस साल के शुरू में या इस साल के मध्य में जो थोड़ी हमने गिरावट देखी, तो वहां पर थोड़ी सी स्थिति जो है वो खरीदारी के मौके बन रहे हैं, यानी कि अंडर वैल्यूएशन वहां पे देखी जा सकती है. इसके अलावा जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, जो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं, उनमें स्थिति भी अंडर वैल्यूएशन का है. तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संभावनाएं बन रही हैं. जहां तक विदेशी बाजारों की बात है, देखिए विदेशी बाजारों में निवेश करना एक बहुत ही अलग तरीके का गणित है. भारतीय शेयर बाजार में जिन परिस्थितियों के आधार पर आप करते हैं वो विदेशी शेयर बाजार के में नहीं होते हैं. तो विदेशी शेयर बाजार में जाने के पहले मेरे हिसाब से मेरी सलाह ये होती है कि पहले आप घरेलू शेयर बाजार में, और अगर घरेलू शेयर बाजार को अगर आप पूरी तरह से नहीं समझ पाते तो म्यूचुअल फंड का रास्ता अख्तियार करते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा. पहले यहां पर पांव जमा लें और फिर विदेशी शेयर बाजारों की ओर रुख करें. जहां तक सवाल वहां पे कौन सा सेक्टर अंडर वैल्यूड है, तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में, अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे कुछ और क्षेत्र होंगे, अगर हम इधर हम एशिया में बात करें, सिंगापुर या चीन या जापान की, वहां पे अलग क्षेत्र होंगे, तो एक कॉमन रिप्लाई देना, एक जिसको कहते हैं ना कि सभी के लिए कोई एक खास क्षेत्र में चुन करके आऊं कि सभी जगह वो अंडर वैल्यूड है, ये कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं जो दोबारा दोहराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के पहले घरेलू बाजार को समझिए, घरेलू बाजार में निवेश करिए, और अगर आप घरेलू बाजार को नहीं समझ पाते हैं, शेयर बाजार को, तो म्यूचुअल फंड का रास्ता आपके लिए एक बेहतर रास्ता है।
शिशिर जी, अभी हमने, हमारे कॉलर ने कहा कि आईटी सेक्टर के बारे में बात करें, अगर हम टेक्निकल उसका एनालिसिस करें तो तकरीबन वो ब्रेकआउट के आसपास है, तो क्या आप देख रहे हैं कि यहां से ये उभरता हुआ सेक्टर है कि और एक रैली, अगली रैली में ये पार्टिसिपेट करने वाला? साथ ही में आपने पीएसयू बैंक की बात करी, क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अगली रैली में पार्टिसिपेट करने वाले? पहला प्रश्न तो ये, साथ ही में दूसरा प्रश्न ये जुड़ा हुआ है कि
आप भी तीन प्रश्न पूछेंगे पहले वाले की तरह, चलिए ठीक है।
कि हमारे कई सारे कॉलर्स हैं जो सीनियर सिटीजन हैं और वो इस मार्केट में क्या करें, उनको इसका आइडिया नहीं है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन डायरेक्ट इक्विटी की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। तो
पहला जो आपका सवाल है सूचना प्रौद्योगिकी का, यानी कि आईटी का, मेरे हिसाब से एक रैली उसमें इंतजार कर रही है, अगले 3 से 6 महीने या 8 महीने में हम वहां पे एक रैली होता हुआ देख सकते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि जैसे जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में एलोकेशन बढ़ेगा तो उसका असर जो है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों पर पड़ेगा। अब देखिए नतीजे आने शुरू हो गए हैं, एक कंपनी के आ चुके हैं, अगले सप्ताह जो है एक और बड़ी कंपनी के नतीजे आएंगे, उन नतीजों से काफी हद तक जाहिर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कंपनियां जो है भविष्य के अनुमान के बारे में भी बताती है, नंबर नहीं देती, संख्या नहीं देती, लेकिन एक अनुमान जताती है कि उनका भविष्य कैसा रहेगा। तो मुझे लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी में जो भी आना चाहते हैं, एक कंपनी जिसके नतीजे आ चुके हैं और एक कंपनी जिसका नतीजा 17 तारीख को आएगा, उनका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट होगा उस पर नजर रखिएगा, वो आपके लिए एक दशा दिशा तय करेगा कि उस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए नहीं। लेकिन एक अनुमान ये जरूर है कि आगे उसमें एक रैली हमको अगले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकती है। दूसरा आपका प्रश्न था सरकारी क्षेत्र की बैंक, मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात की थी, यानी कि सभी सरकारी कंपनियों की बात की थी, और सभी सरकारी कंपनियों में मुझे लगता है कि एक धारणा, अवधारणा बनी हुई है कि ये जो क्षेत्र है इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, तो या एक निवेशक जो है कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट में रहता है। और खास तौर पे अगर मैं जैसे सरकारी बैंक बनाम निजी बैंक की बात करूं, तो निजी बैंक के शेयर जितना आगे बढ़ चुके हैं, सरकारी बैंक उससे बेहतर स्थिति में आने के बाद भी उस तरीके से नहीं बढ़ पाए हैं, जबकि उनका अगर आप कारोबार का आकार देखेंगे तो कहीं बड़ा है, लेकिन वो एक निजी क्षेत्र के बैंक से पीछे ही रहते हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन में एक जो एक परसेप्शन मैनेजमेंट है सरकारी कंपनी चाहे सरकारी बैंक की हम लोग बात करें, उनमें परसेप्शन मैनेजमेंट काफी बदलाव किया। और अगर आप देखेंगे कि जो भारतीय जीवन बीमा कंपनी, मैं एक नाम ले रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग एक पीएसयू की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के बीच में काफी स्थिति जो है वो खराब थी, लेकिन जैसे जैसे परसेप्शन मैनेजमेंट हुआ, ऐसा नहीं कि एक कंपनी का फंडामेंटल रातों रात बदल गया, लेकिन उसकी अवधारणा, उसके प्रति जो सोच है वो काफी बदली है। तो मुझे लगता है कि सरकारी कंपनी चाहे वो सरकारी बैंक की हम लोग बात करें या किसी भी क्षेत्र की सरकारी कंपनी की बात करें, वहां पर परिस्थितियां बदल रही हैं
जी,
और मुझे लगता है कि उनमें स्थिति अच्छी है। अगर आपने विशेष तौर पर बैंकिंग की बात करी है, तो अभी के समय में क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ी चुनौती यह है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, यानी कि जो आप कर्ज पे जितना ब्याज लेते हैं और जमा पर जितना ब्याज देते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो बैंकों के साथ एक बड़ी परेशानी क्या हुई है कि उनका जमा जो है वो कम रहा है और कर्ज देने की रफ्तार थोड़ी बेहतर हुई है, तो उससे उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। अब चूंकि रिजर्व बैंक ने 10वीं बार लगातार मौद्रिक नीति समिति की बैठक में 10वीं बार नीतिगत जो ब्याज दर है, पॉलिसी रेट है, उस पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, और बैंक जो है इस समय अगर आप देखेंगे, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो निजी बैंक हो, जमा पर अच्छा खासा ब्याज देना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको कर्ज के लिए पैसे चाहिए। तो जब कर्ज के लिए आप पैसे का इंतजाम करना शुरू कर रहे हैं और जमा पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बना रहेगा, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो निजी बैंक हो। और आपका जो तीसरा प्रश्न था कि वरिष्ठ नागरिक इस बाजार में क्या करें, अमूमन मेरी जो सोच रही है वो शायद कई और बाजार विशेषज्ञों से अलग रही है, और हमने हमेशा ये कहा है कि बुजुर्गों के लिए शेयर बाजार में जाने के लिए समय उचित नहीं होता है। उसकी वजह भी मैं बता दूं, मेरी राय यह रही है कि शेयर बाजार में आप समय का भी निवेश करते हैं, धैर्य का भी निवेश करते हैं। बुजुर्गों के पास चूंकि संसाधन सीमित हो जाते हैं, उनके पास कमाई के रास्ते काफी सीमित हो जाते हैं। अब ऐसे में यदि वो एक जोखिम वाले माध्यम में निवेश करें जिसमें काफी ज्यादा जोखिम है और उनके पास उतना समय नहीं होता है, खासतौर पर अगर मैं 65-70 के वर्ष के ऊपर की बात करूं, तो ऐसे में उनके लिए शेयर बाजार का रास्ता जो है वो बहुत अच्छा नहीं है कि आपने अभी निवेश किया और 3 महीने में आपने पैसे निकाल लिए, तो शायद आपके लिए वो बेहतर नहीं होगा। तो मेरी हमेशा से राय, मैं विशुद्ध रूप से कह रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है, कई शेयर बाजार विशेषज्ञों के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन मेरी अपनी राय रही है कि बुजुर्गों के लिए अपने पैसे का ज्यादा से ज्यादा जो कर्ज के माध्यम है, जैसे मतलब छोटी बचत योजना है, जो डाकघर की वरिष्ठ नागरिक जमा योजना है, या बैंकों में जो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना है, वहां पर पैसे रखें वो ज्यादा बेहतर।
जी बिल्कुल। रुख करते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए चीन ने आज ऋण में वृद्धि का फैसला किया, लेकिन प्रोत्साहन पैकेज की राशि का खुलासा नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री लैन फुआन ने कहा कि सरकार ऋण की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय सरकारों को मदद प्रदान करेगी, कम आय वाले लोगों को सब्सिडी देगी और राज्य के बैंकों की पूंजी को फिर से भरेगी, साथ ही अतिरिक्त तरीकों पर भी विचार करेगी। उन्होंने निवेशकों के उम्मीदों के अनुरूप नए प्रोत्साहन योजना की राशि न बताकर निवेशकों के इंतजार का समय बढ़ा दिया। अतिरिक्त ऋण को मंजूरी अगली बैठक तक मिलने की संभावना है। बैठक की तारीख की अभी घोषणा नहीं की गई है।
वी आर टेकिंग योर कॉल्स लाइव। डू कॉल अस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिजनेस, इकोनॉमिक एंड स्टॉक मार्केट मैटर्स। द नंबर्स आर 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. So, Shishir, Lambs has the omission of the size of the package is likely to prolong investors' nervous wait for the clearer policy. Last week, this also happened exactly like that. The FIIs came back to India, particularly on Tuesday. They came back, and the primary reason was the lack of clarity. So you think something like that will happen again? Because why is the clarity not given on the stimulus package?
See, China, on the Chinese monetary and fiscal policies are always surrounded by some mystery.
Okay.
So you won't get a very clearer picture until unless they execute.
Even at the risk of that.
Because, I mean, if you just take the one example of valuation of their shares, valuation of their currency. China is one country where when they are going to devalue or when they are going to revalue their currency, which is a yuan or an RMB, you do not know. The world moves in a different direction. China moves in a different direction. So there will be some kind of mystery involved into that. And I believe that China at this moment is taking all the measures, because the Chinese economy, especially the real estate sector, which is having a lot of trouble in that particular country, and also it wants to maintain its share in the global supply chain. So considering all those things, putting more money in the hand of the people, so that's a core area of their focus. But how much money they are going to put it, that's something which we sitting in India, or even people sitting in US, may not be able to know until unless Chinese central bank or Chinese government comes forward and say this much money is being put into the system.
Okay, we'll, time permitting, we'll talk about this further. Meantime, we are joined in by KK Shukla from Mumbai. A warm welcome. Please go ahead and ask your question.
No, actually, my question was that the dollar index,
शुक्ला जी, मुझे लगता है कि आप शायद डॉलिक्स की बात करें, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा इंडेक्स है, और बेसिकली इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जिनका ट्रेडिंग बाहर चल रहा है, या फिर इंडियन जो कंपनीज हैं जिसमें विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं, उनका डॉलर का वैल्यूएशन के हिसाब से वो डॉलिक्स इंडेक्स देखा जाता है। एक भारतीय निवेशक के लिए इसका महत्व ज्यादा नहीं है। एक भारतीय निवेशक के लिए बड़ा महत्व जो है वो ये है कि जो बाकी जो सूचकांक है, चाहे वो बीएसई सेंसेक्स हुआ, चाहे एनएससी निफ्टी, उस पर नजर रखनी चाहिए।
जी, हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं प्रेम पुजारी जी। प्रेम जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना।
नमस्कार सर।
जी नमस्कार
सर। सर मेरे को ये पूछना है कि हम फरीदाबाद में रहते हैं और हमने चांदनी चौक में गए थे हमने गोल्ड की जानकारी लेने के लिए, तो एक वहाँ होलसेल मार्केट है और वहाँ 100 ग्राम से लेके 10 किलो तक आप जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो गोल्ड। हमें ये जानकारी चाहिए कि उसमें हमें प्योर गारंटी इसका गवर्नमेंट का जो स्टैंप होती है वो क्या चीज होती है, तो इसके लिए हमारे कुछ दरवाजे बताइए और हमें कच्ची रसीद लेनी चाहिए कि पक्की रसीद लेनी चाहिए।
देखिए प्रेम जी, मुझे लगता है कि सोना और चांदी एक ऐसी चीज है जिसको आप जब भी खरीदें तो हॉलमार्क के साथ खरीदें, या अगर आप हॉलमार्क नहीं, हॉलमार्क जो कि जवाहरात पे होता है, तो जो बुलियन की मार्किंग है उसको ध्यान में रखिए। और ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग का अगर आपने सोना लेना है तो आप अगर किसी बैंक या MMTC जैसी संस्था से लेते तो बेहतर है। दूसरा जो आपका मेरे ख्याल से आपने शायद यही केवल इतना ही
रिसीट लेनी,
हाँ ये तो देखिए एक सच्चाई ये है कि हमेशा पक्का लीजिए, काम पक्का रखिए। और सोना चांदी कोई ऐसा नहीं कि आप रोज खरीदते हैं, साल दो साल में एक आध बार खरीदते हैं, तो कच्चे पे क्यों काम करना, पक्के पे करिए।
गौरव फ्रॉम गाजियाबाद जॉइन्स अस। गौरव क्विकली गो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन।
सर अभी आपकी न्यूज थी 800 करोड़ रुपए खर्च करके ये लोग नई स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे, पर होता यह है कि स्किल डेवलपमेंट में लोग पैसे खर्च तो होते हैं लेकिन जो भी ट्रेन हो जाता है अच्छे काम करता है बाहर भाग जाता है, दुबई भाग जाता है, मिडल ईस्ट भाग जाता है, रशिया भाग जाता है, जहाँ पे पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये पैसा इस पे क्यों नहीं खर्च किया जाता कि जिनको काम इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, इंडिया में इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, लेबर वेजेस बढ़ा दिए जाए, जिससे लोग इसमें खुद ब खुद आए और पैसे मिलेंगे तो लोग आएंगे, क्योंकि पैसे कम मिलते इसलिए इंडिया में सब लोग भाग जाते हैं। ये क्या स्कीम फेल होने की चांसेस हैं?
गौरव जी पहली बात आज शुरुआत हुई और आज ही हम उसके कुछ जिसको कहें कि बुरे असर की हम लोग बात करें वो उचित नहीं होगा। देखिए आप सरकार किसी भी निजी कंपनी को चेक लिख करके नहीं दे सकते कि आपने अगर कर्मचारियों को रोकना है तो ये पैसे आप उनको मुहैया कराइए। हाँ आपको याद होगा कि कोविड के बाद जो है योजना भी चली थी जिसमें EPF का कुछ पैसा जो है वो सरकार मुहैया कराती थी, ये भी एक तरीका था कि कर्मचारियों को जो नेट इनकम है वो ज्यादा हो। तो देखिए सरकार अपनी एक कोशिश कर रही है, अब एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है और व्यक्ति को अगर मौका मिल रहा है, कहीं भी मौका मिला आप उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं उसको आप बॉन्ड आप साइन करवा देंगे और कहेंगे कि नहीं आप भारत छोड़कर के नहीं जाएंगे क्योंकि भारत सरकार ने आपके ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, ये शायद थोड़ा गलत होगा।
Moving on Wall Street, the S&P 500 and the Dow ended at record highs yesterday with a big boost from financial stocks after banks reported strong quarterly results, while the latest inflation data fueled expectations for a US Federal Reserve rate cut in November. So the Dow Jones Industrial Average climbed 410 points or nearly 1% to close the week at 42,864. The S&P 500 rose 35 points or 0.6% to end at 5,815 and the Nasdaq composite gained 61 points or 0.3% to 18,343. The Dow has really worked well, Shishir, and moved up as well. So there is a strong expectation that the US Fed will cut the rate.
Yeah, there is another round of rate cut which is expected by the US Fed, and that is one indication which US market got on the Friday, and hopefully this will have a very positive impact on the Indian market on Monday.
Okay, what is your expectation in the coming week?
Coming week, there are a lot of things, but one thing which is very clear that first 2 days we will see good rise in the market because of the indication from the US and also from the various other economies. But after that, it will all depends upon that what kind of policy measure government is going to take on a number of policy initiatives which has been announced during the first 3 months of this government. So that is also important.
तो श्रोताओं अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। शिशिर जी आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।
थैंक यू शिशिर फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, रजिस्ट्रेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2024 बिगिंस टुडे बाय ऑफरिंग 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इन द इंटरनेशनल न्यूज, अनाउंसिंग अनदर स्टिमुलस पैकेज, चाइना प्लेजेस टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डेट। एंड ऑन वॉल स्ट्रीट द डाउ क्लाइम्स नियरली 1% to a record closing high. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.